Hari Om, Hari Om, Hari Om. Pavitrayadvani Pravishati Vichitraradyadam Tadakara Chinna Bhavati Nikhilakara Gatita Smarami Pratastam Nayana Ramaniyam Sukhakaram Akhandanandam Shri Guru Varamaham Brahma Paramam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jay Mudiraye Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Guru Ratmeti Murti Bheda Vibhagini Vyomavat Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namah Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranata Klesha Nashaya Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah Hari Om Narayana 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 विषय को आगे बढ़ाना आवश्यक है. दो तीन दिन से एक ही जगह अटका हुआ है, फिर भी ये बात समझने की है कि आत्मा कोई अनेक नहीं हो जाता है. जागृत अवस्था में कोई और आत्मा हो जाता हो, स्वप्न में कोई और हो जाता हो, सुषुप्ति में कोई और हो जाता हो, वही आत्मा बस उसके नाम बदल जाते हैं क्योंकि उसकी उपाधियां बदलती रहती हैं. जागृत में इंद्रियों की उपाधि की प्रधानता होती है, इसलिए दक्षिणाक्षी मुखे कह दिया, नेत्र में बैठता है. और स्वप्न में मन की प्रधानता होती है, इसलिए मन में बैठता है तेजस, ऐसा बोल दिया. और सुषुप्ति में जहां से ये मन और इंद्रियां निकलती हैं उस हृदय आकाश में जाकर के सब बैठ जाते हैं, इसलिए सुषुप्ति अवस्था में मैं हृदय आकाश में प्राज्ञ रूप से रहता हूं. अब आप ये देखो कि ये तीन है कि एक है, ये याद रखने का है. आप तीन को तीन तब कह सकते हो जब तीनों एक साथ दिखें. दिखते तो एक एक करके हैं. जब जागृत दिखता है तो स्वप्न सुषुप्ति नहीं दिखती, जब स्वप्न दिखता है तब जागृत सुषुप्ति नहीं दिखती, जब सुषुप्ति में होते हैं तो जागृत स्वप्न नहीं देखता. तो इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा ही अपने नाम बदल बदल करके इन रूपों में प्रकट होता है. अच्छा, इस समय आपको आत्मा से कुछ और हो गए क्या? बोले हम सत्संगी हैं. अरे भाई, सत्संगी भी तुम ही हो. और जो सत्संग में नहीं आ रहे हैं वो क्या, वो उनमें आत्मा नहीं रहता है? लो, जानते नहीं है कि हम आत्मा हैं. तो अपने को टटकू मटकू कुछ भी मानो. लेकिन रहेंगे सब आत्मा ही, मूल बात इतनी ही है। तो त्रिधा देहे व्यवस्थितः, देह इसके तीन हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, और ये एक के बाद एक ऐसा नहीं है। जिस समय जिस देह को हम पकड़ते हैं बस वही देह है, उसी में तीनों हैं। जैसे इस समय हम स्थूल शरीर में बैठे हैं तो तीनों हैं इस समय, स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, कारण भी है। और जब स्वप्न में चले जाएंगे तो मालूम भले ही ना पड़े स्थूल शरीर, लेकिन कहीं चला जाता है क्या स्थूल शरीर। तो मालूम तो एक एक करके पड़ते हैं लेकिन रहते तीनों हैं। तो त्रिधा देहे व्यवस्थितः, बोले जैसा जागृत में मालूम पड़ता है फिर वैसा ही स्वप्न में सुषुप्ति में अपना आपा क्यों नहीं मालूम पड़ता है। तो इसमें एक युक्ति दी है कि जैसे आप दर्पण में अपना मुंह देखते हो तो दर्पण में तो कांच ही तो होता है, अगर कांच में पीछे पॉलिश न हो तो मुख देखा जा सकता है क्या? नहीं देखा जा सकता। लेकिन आगे और पीछे दोनों ही पॉलिश कर दो तो भी नहीं देखा जा सकता। तो एक तरफ पॉलिश होती है और एक तरफ अनपॉलिश्ड होती है। तो मुंह किसमें देखता है, पॉलिश्ड में या अनपॉलिश्ड में? अनपॉलिश्ड में। तो ये एक है प्राण और एक है मन। तो ये अपना आत्मा का जो मालूम पड़ना है ये मन में होता है, प्राण में नहीं होता है। मन आगे का हिस्सा है दर्पण का, और ये प्राण जो है ये इसकी बैक में रहता है, सबके बैक में है। बिना प्राण के तो शरीर की कोई गति नहीं है। ये पॉलिश है, इसमें नहीं देखता है। एक और वाक्य बड़ा अच्छा है, ये सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है तो इसकी व्यापकता जो है वो कैसी है। तो ये बोलता रहा हूं मैं स्वामी राम सुखदास जी के शब्दों में, वो कह रहे हैं कि सत्य की व्यापकता सर्वत्र है। सत्ता है, ये है, वो है, मैं हूं, नहीं है, नहीं है मैं भी है ही है। तो है की व्यापकता तो सब में है। तो सत रूप से परमात्मा सर्वत्र है और अनुभव में भी आ रहा है। लेकिन पत्थर को आएगा क्या? क्या पत्थर अनुभव कर सकता है कि मैं सर्वत्र हूं? तो उसमें चूंकि चेतना नहीं है इसलिए वो अनुभव नहीं कर पाता। तो मनुष्य या प्राणी क्यों अनुभव कर लेता है? क्योंकि इसमें वो कारण है, अंतःकरण जिसको बोलते हैं। उस अंतःकरण तो सत को तो सब पकड़ लेते हैं, लेकिन ज्ञान को सिर्फ वही पकड़ पाता है जो जिसमें अंतःकरण होता है। पत्थर नहीं पकड़ सकता। तो बोले आनंद भी तो है, तो आनंद कौन पकड़ पाता है? बोले प्राणी तो सब आनंद में आनंद पकड़ तो लेते हैं, लेकिन वो सब यही मानते हैं कि अमुक विषय से आनंद आया, अमुक विषय से। तो सुख को पकड़ने वाले तो सारे प्राणी हैं, लेकिन निर्विषय सुख को, आनंद को पकड़ने वाला सिर्फ मनुष्य है। देवता भी नहीं पकड़ सकते, सिर्फ मनुष्य है। और मनुष्यों में भी वो है जो अंतर्मुख है, महात्मा समझ लो, जिसकी कामनाएं शांत हैं। कामनाओं की शांति में मनुष्य आनंद को पकड़ पाता है। और कामनाएं जब बहुत होती हैं तो उपस्थित आनंद को भी नहीं समझ पाता है। अब कहते हैं कि विश्वो ही स्थूल भुंग नित्यम तैजस प्रविवेक्त भोग आनंद भोग तथा प्राज्ञ स्त्रधा भोगम निबोधत हूं। अलग अलग अवस्थाओं में भोग अलग अलग है। विश्व का भोग है स्थूल विषय, इसलिए विश्व जो है वो स्थूल भोगों का भोगता है। जागृत अवस्था में आपको भूख लगी हो तो रोटी चाहिए, आपको नहीं मन से खा लो तो मन से खाने से भूख नहीं जाएगी। और स्वप्नावस्था में यदि भूख लगी हो तो जागृत में रोटी चाय जितनी रखी हो वो स्वप्न में काम नहीं आएगी, वहां स्वप्न की ही रोटी चाहिए ना। तो स्थूल विश्व जो है वो स्थूल भोगों का भोगता है और तैजस जो है वो सूक्ष्म भोगों का भोगता है और प्राज्ञ आनंद का भोगता है, आनंद भोगाया ही था। त्रिधा भोगम निबोधता, ये तीन प्रकार के भोग तीन दशाओं में हमको प्राप्त होते हैं। हमको मैंने कह दिया तो विश्व तेजस प्राज्ञ नाम वाले जो हम हैं उनको प्राप्त होते हैं। स्थूलम तर्पयते विश्वम प्रविविक्तम तु तैजसम आनंदश्च तथा प्राज्ञम त्रिधा तृप्तिम निबोधतः। अब तृप्ति भी तीन प्रकार की है। जागृत में जो विश्व है उसकी तृप्ति स्थूल विषय करेंगे और स्वप्न में जो तेजस है उसकी तृप्ति सूक्ष्म विषय करेंगे और सुषुप्ति में जो प्राज्ञ है उसकी तृप्ति आनंद करता है, जो जहां का भोग है वही उसकी तृप्ति करता है। त्रिधा तृप्तिम निबोधतः, तीन प्रकार की तृप्ति को जानना चाहिए। अच्छा, अब ये जो अगली कारिका ये समझने की, त्रिषु धाम सुयद भोग्यम भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदै तदुभयम् यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते। त्रिषु धामसु यद भोज्यम, तीनों अवस्थाओं में तीनों धामों में, धाम माने यही जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में जो भोज्य कहा गया और जो भोक्ता कहा गया, तो भोज्य तीन तीन बताए और भोक्ता भी तीन तीन बताए। अरे बोले ये नहीं भाई, तीनों में मैं ही तो भोगता हूं, आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भोगता नहीं है। सिर्फ भोगने का जो हमारे पास उपाधि है, करण है, वो बदलती है। जागृत में इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं, स्वप्न में मन के द्वारा भोगते हैं और सुषुप्ति में अविद्यावृत्ति से साक्षी के द्वारा सीधे ही भोग होता है। तो तीनों अवस्थाओं में जो एक भोक्ता बताया और भोज्य बताए तीन, तो बोले वो तीन तीन नहीं है, वो भी एक ही है। क्योंकि भोग किसको कहते हैं ये बात कल बता तो दी थी, फिर भी समझ लो। उपलब्धित्वम नाम भोक्तृत्वम, भोक्तृत्वम नाम उपलब्धित्वम, सिर्फ ज्ञान होना यही उसका भोग है। अगर आपको ज्ञान न हो तो कितना भी भोग की सामग्री आपके पास पड़ी हुई हो आपको कोई सुख नहीं दे सकते। सामग्री है और भोग की कारण ही आपके पास नहीं है तब भी सुख नहीं दे सकते। अच्छा, और भोग की सामग्री भी है और इंद्रियां भी हैं और जब भोग का समय आया तब बेहोश हो गए, सुषुप्ति आ गई, तब भी आपको कोई सुख नहीं होगा। तो एक ही भोक्ता है और एक ही भोज्य है। वो भोक्ता कौन है कि आत्मा? और एक भोक्ता तो गाली है, मैं कर्ता भोक्ता हूं, इसको तो गाली मानते हैं वेदांत में। तो बोले कर्ता भोक्ता गाली भी है, मगर ये बताओ कि आत्मा से भिन्न और कौन सा कर्ता भोक्ता आएगा? जहां भी ज्ञान होगा वहां आत्मा की उपस्थिति तो स्वीकार करनी पड़ेगी, सिर्फ उसमें एडिशनल और स्वीकार करना पड़ता है उपाधि का। तो इंद्रियों की उपाधि से स्थूल का भोक्ता बन जाता है, ऐसे मन की उपाधि से सूक्ष्म का हो जाता है। अच्छा, ब्रह्म भोक्ता है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि वो अपने से भिन्न कुछ अनुभव ही नहीं करता। और ईश्वर भोक्ता है कि नहीं? वो है, उसके पास क्या कारण है? माया, वो माया के द्वारा भोक्ता बनता है। लेकिन वो माया के द्वारा उसको बांधता, माया बांधती नहीं है उसे, क्योंकि संपूर्ण व्यापक है माया, और उसी माया का एक अंश हमारे पास है, अविद्या जिसको बोलते हैं, वो बांध लेती है हमको। छोटी चीज को पकड़ोगे तो बंधेंगे और उसे फैला दो तो नहीं बंधेंगे। ये हमारे सनातन धर्म का गुर समझ लो इसे। जैसे सेवा है तो शरीर की सेवा करो, अपने अपने शरीर की तो सभी सेवा करते हैं, तो वो भी बांधेगी। और बोले मां की सेवा करो, बाप की सेवा करो, भाई की सेवा करो, बहन की सेवा करो, देश की सेवा करो, विश्व की सेवा करो, जितना जितना इसको फैलाते जाओगे उतना ही उतना वो सेवा बांधेगी, नहीं छुड़ाती जाएगी। फिर बोले ईश्वर की सेवा करो, देश वेश सब छोड़ो, चाहे करो देश की लेकिन ईश्वर की सेवा समझ करके करो, तब तो आप कर्म करते हुए मुक्त ही हो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। यही कर्मयोग का मूल सूत्र है। अच्छा, पैसा बांधता है कि मुक्त करता है? तो अगर सिर्फ अपने ही लिए खाते कमाते हैं तो बांधेगा, उसमें शामिल परिवार को कर लो तो कम बांधेगा, और दायरा बढ़ाते जाओ। ये दान है, दान का मतलब ये भाई किसी दो, यज्ञ है, यज्ञ माने बांटो, दान माने संकल्प पूर्वक दो, और यज्ञ माने बांटो। एक सज्जन बोले कि आपके पास ये कपड़े इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्या करते हैं इसका? मैंने कोई लेता ही नहीं है ना। लाल कपड़ों से लोग भाई महात्माओं को तो सब मिलते ही रहते हैं, और बाकी लोग जो हैं वो लाल कपड़ों से जरा डरते हैं, कहीं छूत का रोग न लग जाए। तो हमें कोई लेता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि इनकी एक गट्ठर बांधो और गठरी बांध करके बाहर रख दो, दरवाजा कर लो बंद, जो चाहे से उठाए, तुम्हारे से तो जान छूटी ना ना रहे। तो यज्ञ यही होता, यज्ञ माने यही है वितरण। इतना पैसा हमारे पास ज्यादा हो गया, अब इसको बांट लो, तो किसी बहाने से बांट लो, यज्ञ कर लो। हवन करना ही यज्ञ नहीं होता है, तो जो भी सत्कर्म है उसमें पैसा झोंक दो, वही यज्ञ हो जाता है। चौथे अध्याय में भगवान ने बहुत सारे यज्ञ बताए हैं, जो यज्ञ अपने को सूट करता हो वो करें। तो ये जब हम तीनों अवस्थाओं का एक भोग है और एक ही भोगता है आत्मा, सिर्फ उपाधि के अंतर से नाम और नामी में फर्क पड़ते हैं, तो जब ये जान जाते हैं तो भुंजानो न लेप्यते, फिर वो भोग करते हुए भी उनसे लेप को प्राप्त नहीं होता। ये इसका दृष्ट फल है इतने का। अभी तत्वज्ञान नहीं हुआ है, तत्वज्ञान की तरफ चल रहे हैं। लेप की परिभाषा एक कल एक सेंटेंस में बोली थी, अहम का इदम के साथ संबंध स्थापित करना, इसी को लेप बोलते हैं। तो वो तो बोले कि वो तो स्थापित हो जाता है। अरे भाई, किसी को मान लो नौकरी करता है, तनख्वाह मिली तो लाके घर में रखी, तो क्या यूं समझेगा कि ये मेरी नहीं है तनख्वाह? तो रुपया तो इदम है और ये मेरा है, ये मैंने मान लिया, तो क्या इतने मात्र से ही लेप हो जाएगा? बोले इतने मात्र से लेप नहीं होगा। अब उसमें क्या है कि ये ऐसा पैसा आता ही रहे और खर्च न हो, तिजोरी भरती ही जाए, माने अहम और इदम का जो संबंध है वो परमानेंट होता चला जाए, बस यही, इसी को लेप बोलते हैं। अरे प्रत्येक क्षण तो अवस्था बदल रही है, जागृत कितनी देर जागृत रहेगी? ज्यादा हिस्से में जागृत रहती है ये तो ठीक है, लेकिन बदलती तो ये भी है ना, स्वप्न भी बदलता है, सुषुप्ति भी बदलती है, समाधि भी बदलती है, भावराज्य भी बदलता है, सब बदलता ही बदलता है। एक परमानेंट तो साक्षी है जो सबको देखता है। तो बस यही है कि वो फिर लेप को प्राप्त नहीं होता। बदलने वाली चीज को बदलने के वाली चीज समझ लो, और ना बदलने वाली चीज जो है वो आत्मा है, वो मैं हूं। मेरे सामने जितने बरस का जो है, इतने बरस की सारी चीजें आई और गई, मैं तो जो का त्यों ही रहा, शरीर भी जा ही रहा है। अब ये बात आती है कि हर जगह आपने समष्टि का विचार किया, विश्व की जागृत अवस्था में विश्व की बात आई तो फिर वहां विराट की विचार करने लगे, तेजस की बात आई तो हिरण्यगर्भ का विचार करने लगे, सुषुप्ति की प्राज्ञ की बात आई तो ईश्वर की बात करने लगे। और उपनिषद ने कह दिया कि यही जो प्राज्ञ है, यही सर्वेश्वर है, यही सर्वज्ञ है, इसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो सुषुप्ति का अनुभव तो ये है कि वहां तो सिर्फ सांस चलती रहती है, और आनंद होता है, सुख होता है, ये तो सब बाद में मालूम पड़ता है। तत्काल तो ये भी नहीं मालूम पड़ता कि आनंद है कि सुख है कि क्या है। देख, बेहोशी किसी अवस्था है, इसको आप ईश्वर कैसे कह रहे हो? अब ये बाकी ये जो कारिकाएं हैं ये उसी के बारे में। प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणश्चेतो अंशून पुरुषः पृथक्। बोले जागृत और स्वप्न में जो वस्तुएं निकली ये मैं हैं ऐसा मालूम पड़ता है ना। सताम माने विद्यमान, जो वस्तुएं इस समय विद्यमान मालूम पड़ती हैं वो आखिर आई कहां से? बोले कहीं से आई होंगी, हमें इससे क्या मतलब? तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं है, ये तो भोगी की पहचान है। बोले सामने है तो बस इसका फायदा उठा लो, कहां से आई, क्यों आई, झंझट में क्यों पड़े? क्योंकि निर्णय तो कोई करता नहीं है और 10 आदमी 10 तरीके से निर्णय करते हैं। तो भाई जो विद्यमान वस्तु है उसकी उत्पत्ति जरूर होती है, वो पहले कहीं नहीं थी और फिर सामने आ गई। तो बोले महाप्रलय में नहीं थी, तो महाप्रलय तो जैसे पहले बात आ चुकी है वो तो जनरलाइजेशन है सुषुप्ति का। महाप्रलय कोई देख नहीं सकता, सुषुप्ति सब रोजाना देखते हैं। तो जितने भी विद्यमान वस्तुएं हैं उनकी प्रभाव माने उत्पत्ति होती है, ये निश्चित बात। अर्थात किसी अवस्था में वे नहीं है ऐसा मालूम पड़ता है और फिर है ऐसा मालूम पड़ता है। अच्छा, ये शरीर कहां से आया? तो बोले बाप से आया। तो बोले बाप में कहां से आया? तो स्वामी महेशानंद जी कहते हैं कि वो तो बाप के बाप को भी पता नहीं है कहां से आया। इसीलिए कहते हैं कि अज्ञान में से ही सब चीजें निकलती हैं। जिस अंतिम जब सबका उत्तर यही है कि पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है, तो पहले ही मान लो ना कि अज्ञान में से आया। बोले ये कहीं इसका दृष्टांत है कि सुषुप्ति है? सुषुप्ति ऐसी अवस्था है कि वहां कुछ अनुभव में नहीं आता है और फिर सब अनुभव में आने लगता है जैसे ही टूटती है। तो अगर वहां नहीं था उस समय तो निकल कहां से आया? तो ये मानना पड़ता है कि उनका बीज सुषुप्ति अवस्था में था और फिर जागृत होते ही वो बीज जो है वो अंकुरित हो जाता है। सर्वम जनयति प्राणश्चेतो अंशून पुरुषः पृथक्। अब सुषुप्ति में कहते हैं बस प्राण चलता रहता है। जरा अपनी सुषुप्ति के बारे में सोचो, मेरी नहीं अपनी, प्राण चल रहा है क्या सुषुप्ति में? किसको मालूम पड़ेगा? अगर आपको यह मालूम पड़ रहा है कि मेरा प्राण चल रहा है तो आप सुषुप्ति नहीं है। तो ये तो दूसरों की गवाही से कहते हैं कि सुषुप्ति में प्राण चलता रहता है। तो ऐसे ही महाप्रलय को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये तो मालूम, ये तो कोई ना कोई गवाही देगा ही, शास्त्र देगा कि भाई उस समय भी एक शक्ति जो है वो विद्यमान रहती है, उसी को प्राण बोलते हैं। प्राण माने प्राण का अव्यक्त रूप, वो रूप जो कि जाहिर नहीं है ये जो प्राण चल रहा है हमारा, ये तो जाहिर रूप है, व्यक्त रूप है। ये व्यक्त कैसे हुआ? तो पहले अव्यक्त था, अब व्यक्त हुआ, इसी को उत्पत्ति बोलते हैं। तो अव्यक्त को हम व्यक्त का बीज मानते हैं। तो सर्वम जनयति प्राण, ये प्राण जो है ये सबका जनक जो है यही है, इसी से सबकी उत्पत्ति होती है। सांस मत मान लेना, अव्यक्त उसी को माया बोलते हैं। अब माया कहते ही कुछ तो भी दिमाग में आ जाता है, कोई स्त्री होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। तो स्त्री तो इसलिए रखा है कि यहां देखते हैं कि स्त्री शरीर आवश्यक है जनक उत्पत्ति करने में, आवश्यक तो पुरुष भी है लेकिन भूमि तो स्त्री ही होती है, तो इसलिए वहां भी माया को स्त्रीलिंग बना लिया। लेकिन वहां की जो माया है वो स्वतंत्र नहीं है, वो ईश्वराश्रित है। मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर, हेतु नानेन कौन्तेयो जगत विपरिवर्तते। अब हमारा देखो, क्षमा करना, सनातन धर्म में तो ऐसे ही मानते हैं कि यही सामाजिक व्यवस्था रहेगी तब तो रहेगा ठीक, और सांख्यों की तरह से प्रकृति यदि स्वतंत्र हो जाएगी तो क्या रचना रचेगी ये तो भगवान ही जाने। और हो रहा है, स्त्री स्वातंत्र के नाम पे जो कुछ चल रहा है तो समाज में विकृति ही ज्यादा हो रही है। तो वहां मयाध्यक्षेण प्रकृति, अध्यक्षता जो है भगवान कहते हैं, अध्यक्षता मेरी, हुक्म इच्छा मेरी, और एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो प्रकृति माया। अच्छा बोले केवल स्त्री मान लो, पुरुष की जरूरत ही नहीं है, तो मानने को तो कुछ भी मान लो। जो देवी से सृष्टि मानते हैं भाई, शाक्त लोग जो हैं वो देवी से ही सृष्टि मानते हैं, वहां वो शिव की जरूरत ही नहीं मानते, तो व्यवस्था तो वहां भी बन जाएगी। शैव लोग जो हैं वो शिव भी मानते हैं और देवी भी मानते हैं, वैष्णव जो हैं वो सिर्फ विष्णु मानते हैं, वो लक्ष्मी को नहीं मानते, माया मानते। माया के दो रूप हैं, एक लक्ष्मी और एक भूदेवी, अचल संपत्ति और चल संपत्ति, ये दोनों माया के रूप हैं। नारायण तो कहते हैं कि जनयति प्राण, प्राण जो है वो सबके शरीरों की रचना करता है। अब इसमें चेतना जीव कैसे पैदा हो गया? तो जीववादी तो कहते हैं कि जीव पैदा ही नहीं होता है, वो तो हमेशा से ही रहता है। जो जीव को अनादि अनंत मानते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हमेशा जीव रहता है। अगर हमेशा जीव रहेगा, जीव जीव ही रहेगा हमेशा, तो मोक्ष की तो आशा ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जीव रहेगा तो जीवत्व भी रहेगा, जीवत्व रहेगा तो बंधन भी रहेगा, सुख दुख का द्वंद्व भी रहेगा। इसलिए शास्त्र निरर्थक हो जाएगा, सारा मोक्ष शास्त्र जो है बेकार। तो जीव हमेशा से है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्वतंत्र रूप से है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि हमेशा से तो है लेकिन वो ईश्वर के अंग के रूप में रहता है। शंकराचार्य भगवान ने कहा कि जब तक माया अविद्या है तब तक रहता है, और यदि अविद्या कट गई तो वो जीव भले ही बना रहे, जीवत्व समाप्त हो जाता है, बंधन उसका कट जाता है। मच्छर मारने के लिए वो दवाएं छिड़की गई थी ना, तो बाद में फिर भी मच्छर तो रहे, मलेरिया तो खत्म तो फिर उस पर लिखा गया मच्छर रहेगा मलेरिया नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जीवत्व नहीं रहेगा, जीव रहेगा। माने जीव तो अपने यहां तो जीव जो है अहंकार का ही एक नाम है। चैतन्य के आभास से युक्त तो जो अहंकार है वही जीव। तो बोले ये जीव फिर आया कहां से, कि चेतो अंशून पुरुष पृथक। जो नारायण है चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, उसकी जो अंशून माने अंशवा किरणें हैं, वो किरणें जब पानी पर पड़ती हैं, शीशे पर पड़ती हैं, तो वहां अपना प्रतिबिंब सूर्य का बना देती हैं। ऐसे ही आत्मा का प्रतिबिंब जब अहंकार पर पड़ता है, अहंकार की उत्पत्ति तो प्राण से हो गई, अब प्राण पर जब चैतन्य की किरणें पड़ी तो वो एक्टिवेट हो गया नारायण, उसमें आभास सूर्य का पड़ने लगा, प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब सहित जो अहंकार है उसको जीव बोलते हैं। तो बोले बस हो गया, अरे वो तो व्यापक है ना चैतन्य, तो अहंकार पे पड़ा तो वो मुख्य जीव हो गया, उसके बाद मन पे पड़ा, उसके बाद इंद्रियों पे पड़ा, फिर इन सब की वृत्तियों पे पड़ा, तो जितनी वृत्तियां हैं उन सब में एक एक आभास है। वो तो कभी मैंने आपको शायद सुनाया भी था, अंधेरे में ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, एक जरा सा दीवार में छेद कर दो जिससे रोशनी आवे, और एक परात में पानी रख दो या यहां मिरर रख दो, उस पर उसको किरण को पड़ने दो, क्या होगा? फिर वो लौटेगी, कहां जाएगी लौटकर? फिर दीवाल पर जाएगी, फिर दीवाल पर जहां पर जा रही है वहां एक मिरर रख दो, फिर एक टकराएगी वो, फिर कहां जाएगी? तो बोले सामने वाली तरफ जाएगी। तो जहां जहां चलती जा वहीं वहीं आप दर्पण रखते जाओ, तो प्रतिबिंबन तो सब जगह होगा, लेकिन सबसे मुख्य प्रतिबिंबन कहां होगा? जहां सबसे पहले पड़ी, और बाकी सब क्षीण होते चले जाएंगे। तो आत्मा का आभास तो हमको प्रत्येक वृत्ति में हो रहा है, प्रत्येक क्रिया में हो रहा है, लेकिन मुख्य आभास उसका अहंकार में ही होता है, उसको ही जीव बोलते हैं। लेकिन व्यापक वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता है, ये बात समझनी चाहिए। ये चिदाभास का जो सिद्धांत है ये वैसे तो सरल है, बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि जो व्यापक वस्तु है और निरवयव वस्तु है, निर्गुण वस्तु है, उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। तो फिर प्रतिबिंब का मतलब होता, आभास का मतलब होता है कि उस जैसा, जैसे दर्पण में जो हम प्रतिबिंब देख रहे हैं वो कैसा है? बिंब जैसा है, लेकिन बिंब है क्या? तो ऐसे ही जैसे बाप की शक्ल का बेटा हो जाता है तो बेटे को देख करके बाप की याद आ जाती है। अपनी तरफ बोलते हैं कि बाप की होड़ मारे है अपने ईडियम है, होड़ मारे है। होड़ मारे माने बाप जैसा ही लगता है। तो ऐसे ही ये जो अहंकार है जब ये चैतन्य के संपर्क में आता है नारायण तो ये चैतन्य जैसा बिहेव करने लगता है। मैंने जाना, मैं जानूंगा, मैं भोगता हूं। है तो धर्म ये चैतन्य का, लेकिन वो अहंकार अपने ऊपर ले लेता है। यही जीवत्व है। तो बोले जीव कहां से आया का चेतो अंशून। ये पुरुष की जो रश्मियां हैं, ये रश्मियां जो हैं ये अपना आभास के द्वारा अनेक जीवों की रचना कर देती हैं। इसलिए ये प्राण और चैतन्य, अब प्राण की जगह आप माया कर लो, अव्यक्त कर लो, और चैतन्य की जगह ब्रह्म कर लो, तो ये ही समष्टि में ईश्वरता का निर्वाहक हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट कारिका है ये छठी, अभी जो आपको समझाई। अब कहते हैं कि प्रक्रिया और बताओ। ये तो आपने एक एक ही सपट्टे में सब कर दिए। प्राण से सारी वस्तुएं उत्पन्न हो गई और चेतन की रश्मियों से ये जीव उत्पन्न हो गए। तो बोले भाई हमारा ये विषय नहीं है। जो परमार्थ के चिंतक लोग हैं वो तो आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन करते हैं, ये सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी नारायण। तो ये वो लोग चिंतन करें जो सृष्टि को ही महत्व देते हैं, लेकिन जो परमार्थ चिंतक हैं उनके लिए ये प्रश्न गौण है। फिर भी हम ये ऐसा मानते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा मान लो। हमारी तरफ से तो ये अनिर्वचनीय स्थिति है। अनिर्वचनीय का मतलब गलत मत समझ लेना। एक सज्जन कह रहे थे कि वेदांतियों ने अपने अज्ञान को छिपाने के लिए अनिर्वचनीय शब्द रख दिया। बोले शब्दों से नहीं कहा जा सकता। अरे तो कहना तो शब्दों से ही पड़ेगा, लेकिन वह अनिर्वचनीय का मतलब ये नहीं है। वह अनिर्वचनीय का मतलब यह है जो जैनियों का स्यात्वाद है ना, उसी अर्थ में समझ लो। जैन धर्म में कहते हैं स्यात् संस्कृत का शब्द है, वैसे स्यात् माने होता है शायद, शायद परहैप्स, शायद ऐसा ही हो। बोले सृष्टि परमाणुओं से बनी तो जैनी कहेगा स्यात्, हो सकता है ऐसे बनी। भौतिकवादी कहेगा कि हमारे परमाणुओं से बने, वैशेषिकों के परमाणुओं से नहीं बने, दोनों में अंतर है। तू कहेगा स्यात्, हो सकता है ऐसा ही हो। जो भी आप कारण बताओगे सृष्टि का उसमें वो स्यात है, माने संभावना है ऐसी, इसको अनिर्वचनीय बोलते हैं। अनिर्वचनीय का मतलब ये नहीं है कि हम अपना अज्ञान छिपाने के लिए कहते हो, शब्द से हम वर्णन नहीं कर सकते। अरे तुम करो, हम तो उसको कहते हैं यस सर, ऐसा काम तुम्हारा काम चल रहा है इसको मानने से, ठीक है चलाओ, हमें ये चाहिए नहीं। वो कहते हैं, वेदांती लोग कहते हैं कि हमें ये संसार का फल नहीं चाहिए। मान लो हम इस निश्चय में पहुंच भी गए कि ये संसार ऐसे बना और इसने बनाया, तो उससे क्या होगा, जिसने बनाया उसके पराधीन रहना पड़ेगा नंबर एक। और जो चीज अगर ये सत्य सिद्ध होती है तो इसको भोगने की इच्छा उत्पन्न होगी। वो तो हमने दोनों ही त्याग दिए, पराधीनता हमको चाहिए नहीं, भोग की हमारी इच्छा नहीं है नारायण, तो हम क्यों इसमें माथा पच्ची करें। तो अब आगे कहते हैं, वैसे ये विषय जो है वो दूसरे प्रकरण में, वैतथ्य प्रकरण में बहुत डिटेल्स में 30-31 विकल्प दिए हैं कि सृष्टि जो है वो कैसे पैदा हुई होगी। तो अपना पक्ष नहीं है, ये सब अलग अलग पक्ष हैं जैसा लोग मानते हैं। यहां तो बहुत थोड़ा सा दे दिया है प्रसंगवश। विभूतिम प्रसवम त्वन्य मन्यन्ते सृष्टि चिंतका स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता। मैं भी ज्यादा इसमें समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो मुख्य मंत्र है सातवां और उसकी जो कारिकाएं हैं वही उसके पूरे मांडुक्य उपनिषद की जान है। विभूतिम प्रसवम तु अन्य मन्यन्ते सृष्टि चिंतका, जो सृष्टि के चिंतन करने वाले हैं, तो भाष्यकार लिखते हैं न तो परमार्थ चिंतका वो सृष्टि की ही चिंता करते हैं, परमार्थ की चिंतन नहीं करते। तो सृष्टि की चिंतन करने वाले कहते हैं कि अन्य, ये शंकराचार्य जी का पारिभाषिक शब्द है, उपेक्षा के भाव से जिसको कहना हो उसको कहेंगे अन्य, दूसरे लोग ऐसा बोलते, माने ये हमारा पक्ष नहीं है। क्या मानते हैं कि विभूतिम प्रसवम, ये भगवान की सब विभूति है, बस इसमें संतोष भी हो जाता है। जब आपने भगवान शब्द मान लिया, भाई ऐश्वर्यवान है तो उसके ऐश्वर्य के लिए कुछ दिखाओ भी तो सही। अब तुम्हारा पति तो हो लेकिन रह रहे हो फूस की झोंपड़ी में, तो कैसे मालूम पड़े कि तुम्हारा पति हो, कुछ बाहर चिन्ह तो होना चाहिए। तो भगवान हो तो तुम उसका कुछ भगवत्ता दिखाओ तो सही। तो बोले उसने ये सृष्टि जो रची है यही उसका ऐश्वर्य है। तो ये कौन मानते हैं, ये जितने भगवान को अलग मानने वाले लोग जो हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सब स्वप्न के समान है, और सबके नारायण वो भी मिल जाते हैं प्रमाण भी, जैसे यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव तत्देवावगच्छत्वम मम तेजो वंश संभवम। गीता में भगवान ने लिख दिया है, जहां जहां कुछ भी विशेषता देखो मेरी विभूति ही समझो उसे, तो ये भगवान की विभूति है। इसको मानने में कोई हर्ज भी नहीं है, भगवत भाव तो इससे दृढ़ होता ही होता है। दूसरे लोग कहते हैं कि ये सृष्टि जो है वो स्वप्न है, स्वप्न के समान है, इसमें भी प्रमाण खोज लेंगे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सपना है तो फिर बोरिया बिस्तर उठाओ नारायण, या काहे लिए पड़े हो, घर जाओगे या सत्संग भवन में आओगे। तो किस स्तर की कौन सी बात है, तो स्वप्न है और माया, मायावादी कहते हैं कि ये भगवान की माया जादू है। ये जो गौड़ी संप्रदाय वाले हैं ना, गौड़ी संप्रदाय के इतने नहीं है जितने इस्कॉन वालों ने इसका ज्यादा प्रचार कर दिया। वो कहते हैं, ये शंकराचार्य को कहते हैं मायावादी ये उनकी गाली है, मायावादी जब कहें तो समझो वो शंकराचार्य को बारे में बोल रहे हैं, मायावादी। महाराष्ट्र कहते हैं हम मायावादी नहीं है और हम ब्रह्मवादी भी नहीं है, हम तो ब्रह्म है। उड़िया बाबा जी से पूछा था किसी ने, महाराज आप ब्रह्मवादी हो ना, बोले नहीं रे हम तो ब्रह्म है। वाद तो एक पक्ष होता है, ब्रह्म माने ऑल इन वन, उसमें सब समाया हो। निर्विवादो अविरुद्धस्य, ये अलात शांति की कारिका है। कहते हमारा किसी से ना विवाद है ना हम किसी का विरोध करते हैं, मगर तुम आपस में ही लड़ते हो तो हम तो तमाशा देखते हैं। न्याय सांख्य का खंडन करता है, सांख्य न्याय का खंडन करता है, नारायण बौद्ध जो है वो सांख्य न्याय का खंडन करते हैं, वो दोनों मिलकर के बौद्ध का खंडन करते हैं, जैनी बौद्धों का खंडन करते हैं। बोले लड़ो, हम तो अखाड़े का तमाशा देख रहे, हमारा किसी से विवाद नहीं है, क्योंकि हम तो ब्रह्म है, सबका अधिष्ठान है, सब अपने में ही तो खेल हो रहा है। ये जो अंतिम अनुभूति है, तो कहते हैं कुछ लोग तो कहते हैं ये स्वप्न है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये माया रूप है। इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि ही इति सृष्टौ विनिश्चिता कालात् प्रसूतिम भूतानाम मन्यन्ते कालचिंतका। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने संकल्प किया सृष्टि हो गई, तो उनकी इच्छा है, बस भगवान की इच्छा का ये स्वरूप है जो संसार है। तो इच्छा भगवान में इच्छा भी होती है, ऐसा कहते हैं। तो वेदांती तो कह देता है कि इच्छा क्यों नहीं हो सकती जब चैतन्य है, तो ये तो चेतन का धर्म है। पत्थर में इच्छा नहीं होती, जड़ में इच्छा नहीं होती, चेतन में तो इच्छा होगी। अब अनंत विषयक भी इच्छा इच्छा है और स्वल्प विषयक इच्छा भी इच्छा है, कैसी इच्छा है ये प्रश्न है। तो ईश्वर ने इच्छा की, संकल्प किया, तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए, इसमें भी प्रमाण मिल जाता है। उसने संकल्प किया बहुत हो जाऊं, यही उसकी इच्छा है। तो वेदांति कहते हैं कि इच्छा माने माया, माया को ही वहां इच्छा कहा है। बिना माया के, बिना शक्ति के, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उससे सृष्टि की उत्पत्ति किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए जहां कहीं ब्रह्म को जगत कारण बताया गया है उपनिषदों में, वहां माया सहित ब्रह्म ही अर्थ करना चाहिए। तस्मात् वाय तस्मात् आत्मना आकाश संभूता। अब इसके भाष्य में शंकराचार्य जी ने स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन सुरेश्वराचार्य जी ने बिल्कुल स्पष्ट भाष्य के ऊपर उन्होंने वार्तिक लिखा है, तो उस वार्तिक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तस्मात् वा का मतलब वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वाला नहीं, उसके साथ माया लगाओ तब वो सृष्टि का कारण बनेगा ना। और आत्मा से सृष्टि हुई तो आत्मा भी निर्गुण निराकार है, इसमें भी अविद्या जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक ये जगत की रचना, शरीर की रचना नहीं हो सकती। आखिर आत्मा में शरीर क्यों हुआ? बोले पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किए थे उसके फल भोग के लिए, ये तो कर्म किए थे ना, करने वाला था ना, तो जीव तो पहले बन ही चुका हो, तो अविद्या तो पहले स्वीकार करनी पड़ती है। इच्छा भगवान की इच्छा मात्र है ये सृष्टि, ऐसा उन लोगों ने निश्चय कर रखा है। और कालात् प्रसूतिम भूतानाम मन्यन्ते कालचिंतका, और जो काल के चिंतन करने वाले हैं, अच्छा ये बताओ सृष्टि हुई कब, कब हुई, कितने साल हो गए? अब वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती को 7 अरब साल हो गए, ये धरती बने हुए 7 अरब साल हो गए। अब ये बिग बैंग कब हुई, इसका हल्ला मचा रखा है, ये बिग बैंग कब हुए? बोले सूर्य में हुआ, तो संसार में एक सूर्य है, एक सूर्य का तुमने पता लगा लिया। बत्तीस नील वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है ना। नील तो समझ गए ना, अब तो करोड़ से आगे कोई लिखता ही नहीं है ना अखबारों में, न कहीं इतने लाख करोड़, इतने करोड़ 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 से आगे गिनती खत्म कर दी। और हमारे यहां तो संख महासंख तक जो है गिनती जाती है ना रहे, 10^23 तक तो तैतरीय उपनिषद में ही है। तो कालात प्रसूतम, जो काल चिंतक हैं वो कहते हैं कि ये काल से ही सब भूतों की उत्पत्ति होती है। बस एक मिनट और लेता हूं, ये हुई क्यों? बोले भोगार्थम सृष्टि रित्यन्य क्रीड़ार्थम इति चापरे। कोई कहते हैं जीवों के भोग के लिए सृष्टि बनाई, कोई कहते हैं नहीं ईश्वर ने अपने खेल के लिए बनाई, मैंने बाला के ईश्वर खेले बिना रहा नहीं जाता। देवस्य ईश स्वभावोयम, बोले भाई कुछ भी कहो हम तो यही मानते हैं कि ये ईश्वर का स्वभाव है। आप्त कामस्य कायस्प्रया, जो आप्त काम है पूर्ण काम है उसमें ये सब कुछ नहीं, तार्किक नहीं है। तुम्हें जैसा मानना हो मान लो, हमारे लिए तो सृष्टि पूर्ण परमात्मा स्वरूप है। हरि ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।